हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 12। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तये, कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्त्व, आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता, श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थोमा। श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्राद्रहो न परः, वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीताम्बरधरुणबिम् बफल धरोष्ठा, पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं
నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవదీయుత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి నైష్టికీ. పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూపస్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం. శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత కథాధార శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరి కృష్ణ 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 హరి హరి, హరి రామ 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 హరి హరి. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం మహాపురాణకి జయ హో. ప్రథమ స్కంద్ అధ్యాయ 16 శ్లోక సంఖ్య 12. కృపయా ఇన్ అత్యంత ఈ పవిత్ర శబ్దంకు మేరే సాథ్ సాథ్ ఉచ్చారణ కర్నే కా ప్రయాస్ కీజియే. సూత్ గోస్వామి కహతే హై, భద్రాశవ భద్రాశ్వం కేతుమాలం చ భారతం చోత్తరాన్ కురూన్ కిం పురుషాదీని వర్షన్ విజిత్య జగ్రిహే బలం. భద్రాశ్వం కేతుమాలం చ భారతం చోత్తరాన్ కురూన్ కిం పురుషాదీని వర్షాణి విజిత్య జగ్రిహే బలం. భద్రాశ్వం కేతుమాలం చ భారతం చోత్తరాన్ కురూన్ కిం పురుషాదీని వర్షాణి విజిత్య జగ్రిహే బలం. శబ్దాత్ భద్రాశ్వం అర్థాత్ భద్రాశ్వ, కేతుమాలం అర్థాత్ కేతుమాల్, చ భీ భారతం అర్థాత్ భారత్, చ యని తథా, ఉత్తరాన్ యని ఉత్తరీ దేశ్, కురున్ యని కురు వంశ కా రాజ్య, కిం పురుషాదిని అర్థాత్ హిమాలయ కే ఉత్తరీ దశా కే ఆగే, ఔర్ వర్షాణి మతలబ్ పృథ్వీ లోక కే భాగోం కో, విజిత్య జీత్ కర్, జగ్రిహే బలిం, జగ్రిహే మతలబ్ వసూల్ కియా, ఔర్ బలం యని బలిం యని బేంటే, ఉపహార యా టెక్స్. అనువాద్ తబ్ మహారాజ్ పరీక్షిత్ నే పృథ్వీ లోక కే సమస్త భాగోం భద్రాశ్వ, కేతుమాల్, భారత్, కురు జాంగల్ కా ఉత్తరీ భాగ్, కిం పురుష్ ఆది కో జీత్ లియా ఔర్ ఉన్కే శాసకోం సే భేంటే వసూల్ కీ. జసా కీ ఆప్ జాన్తే హై కి శ్రీమద్ భాగవతం ఈ సాక్షాత్ భగవాన్ కీ వాంగ్మయీ మూర్తి హై. ఇస్కా ఏక్ ఏక్ శబ్ద జో హై వో బహుత్ మహత్వపూర్ణ హై. ఇసే శ్రీల ప్రభుపాద్ జీ నే ఇన్ సమస్త జితనే భీ జగోం పర్ రాజా నే గయే థే రాజా ఔర్ వహాన్ పర్ కలియుగ్ కీ జహాన్ జహాన్ కలియుగ్ కా ఆగమన్ హో గయా థా వహాన్ ఉన్కో పరాస్త్ కియా థా, తో ఏక్ ఏక్ జగా కే విషయ మే శ్రీల ప్రభుపాద్ జీ నే బహుత్ హీ సుందర్ డిటేల్ సే బతాయా హై, తో కృపయా ధ్యాన్ సే శ్రవణ్ కరేంగే. పహలా హై భద్రాశ్వం, उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यह मेरु पर्वत के निकट का द्वीप है और यह गंधमादन पर्वत से खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है. अभी ये क्या है, जो मेरु पर्वत है ना उसके निकट एक द्वीप है. अभी द्वीप किसको बोलते हैं, आइलैंड को बोलते हैं. वैसे तो आइलैंड सिर्फ जो समुद्र के करीब होते हैं उनको बोला जाता है ना द्वीप आइलैंड, लेकिन वास्तव में जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, उनको यहाँ शास्त्रीय भाषा में द्वीप कहा जाता है। जैसे ये जम्बो द्वीप है, तो द्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब जितने भी प्लैनेट्स हैं वो स्पेस में घूम रहे हैं, स्पेस में तैर रहे हैं ना, तो इसको सबको द्वीप कहा जाता है। और यहाँ पर बताया कि गंधमादन पर्वत से लेकर खारे पानी के समुद्र तक फैला हुआ है। और इसकी डिटेल कहाँ पर है? महाभारत में भीष्म पर्व में 7.16 से लेकर 18 तक इस द्वीप का वर्णन है। संजय ने धृतराष्ट्र को इसका वर्णन सुनाया था। महाराज युधिष्ठिर ने भी इस द्वीप को जीता था और यह प्रांत उनके राज्य की सीमा के भीतर आ गया था। महाराज परीक्षित को पहले अपने पितामह द्वारा शासित सारे देशों का सम्राट घोषित किया गया था, लेकिन उन्हें उस समय अपनी श्रेष्ठता स्थापित करनी थी, तब वे ऐसे राज्यों से भेंटे लेने के लिए राजधानी से बाहर निकले थे। यानी कि वैसे तो महाराज परीक्षित को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया था युधिष्ठिर महाराज ने, लेकिन वो चाहते थे कि सारे जितने भी राज्य मेरी सीमा में आते हैं तो वहां पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की जाए। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि वो जाएं और सब लोग, जिस तरह ऐसे राज्य नहीं करना चाहते थे जैसे हिटलर और नेपोलियन इत्यादि करते हैं। वो ये चाहते थे कि अगर मेरी सत्ता या श्रेष्ठता सब जान रहे होंगे तो क्या करेंगे, तो मैं जो उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस दूंगा वो फॉलो करेंगे, वरना तो क्या होगा, वो सब अपराधी हो जाएंगे। क्योंकि कलयुग तो आ गया है, ये कलयुग के आने के बाद की ही बात है कि वो दिग्विजय करने के लिए गए थे, तो इसलिए वो सबके ऊपर सब जगहों पर अपनी श्रेष्ठता जमाने के लिए उनसे भेंटे लेते थे, उनसे पुरस्कार लेते थे। उसके बाद केतुमाल, उसके विषय में श्री रूपा जी कहते हैं, ये पृथ्वी लोक 7 समुद्रों द्वारा 7 द्वीपों में विभक्त है। पृथ्वी पर 7 समुद्र हैं, जिसके कारण 7 आइलैंड में विभक्त है। टोटल 7 आइलैंड्स हैं, किंतु कोई कोई इसे 9 भागों में विभक्त मानते हैं। और केंद्रीय द्वीप जो जम्बू द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, 8 विशाल पर्वतों द्वारा 9 वर्षों या भागों में विभाजित है। इनमें से भारतवर्ष भी एक है। केतुमाल को भी उपर्युक्त वर्षों में एक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल वर्ष की स्त्रियां अत्यंत ही सुंदर होती हैं। इस वर्ष अर्थात भूभाग को अर्जुन ने भी जीता था। इस भूभाग का वर्णन महाभारत सभा प्रो 286, 32 और 33 में प्राप्त होगा। तो ये अर्जुन ने इसको जीता था। और इसके विषय में श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि पृथ्वी लोक 7 द्वीपों या 7 समुद्रों में विभक्त है, लेकिन कोई कोई लोग क्या समझते हैं कि ये 9 द्वीपों में विभक्त है। तो इनमें से जो ये केतुमाल भी एक है, और इसको पहले अर्जुन ने जीता था, और अभी दिग्विजय के समय पर महाराज परीक्षित ने भी इस पर विजय प्राप्त की। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि केतुमाल मेरु पर्वत के पश्चिम में स्थित है और इस प्रांत के निवासी 10,000 वर्षों तक जीवित रहते थे। भविष्य पर्व 6, 16.31 एंड 32, इस भाग के मनुष्य सुनहरे रंग के होते थे और स्त्रियां स्वर्ग की अप्सराओं के समान होती थी। ये निवासी सभी प्रकार के रोगों तथा शोकों से मुक्त होते थे। इतना सुंदर राज्य जहाँ पर स्त्रियां जो है वो अप्सराओं जैसी और पुरुष जो है वो निरोगी रहते थे, मतलब कोई शोक नहीं होता था, कोई रोग नहीं होता था। और परीक्षित महाराज ने ऐसे ऐसे द्वीप होते थे हमारे इस पृथ्वी पर और उनको राजा जीता करते थे। आज का राजा तो क्या होता है, एक छोटी सी कंट्री का राजा होता है और वो भी इतना उसके अंदर साहस नहीं होता, इतना उनके अंदर प्लानिंग्स नहीं होती है कि वो छोटे से इस राज्य को संभाल सके। और कहते हैं कि कभी इतने सारे झगड़े होते हैं, इतना वो होता है, इतना फसाद होता है और लगे रहते हैं कि भाई हमें सेटिंग करनी है, कुछ कर नहीं पाते। लेकिन पहले के राजा बहुत महान, जैसे परीक्षित महाराज जो हैं वो राज ऋषियों के अंतिम राजा हैं। तो उनके विषय में बता रहे हैं कि कौन कौन से राजा उनके अंडर में, राज्य उनके अंडर में होते थे। आगे है भारतवर्ष। संसार का यह भाग भी जम्बू द्वीप के 9 वर्षों में से एक है। भारतवर्ष का वर्णन महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 9 और 10 में दिया हुआ है। तो ये भारतवर्ष में भी वो गए थे और उसको भी विजय प्राप्त की थी। आगे है उत्तरा। जैसे ये सारे लिखे हुए हैं ना, भद्राश्वम केतु मालम च भारकम चित्चोत्तरान गुरु, ये सब यहाँ पर बता रहे हैं। तो उत्तरान यानी जम्बू द्वीप के मध्य में इलावर्त वर्ष है। जो इलावर्त है ना, वही भारत बाद में बना है। और इलावर्त के दक्षिण में हरिवर्ष है। इन वर्षों के का वर्णन महाभारत सभा पर्व 28.7 और 8 में इस प्रकार दिया गया है। तो ये जो है वो महाभारत में सब बहुत डिटेल से बताया गया है, क्योंकि जो उनके पूर्वज हैं जैसे पांडव जो हैं, उन्होंने भी ये सारे जगहों पर अपना गए थे और विजय प्राप्त की थी। तो बहुत ही डिटेल से उनके विषय में उसमें लिखा हुआ है। और यहाँ उसमें क्या लिखा हुआ है, इस भारत इन वर्षों का वर्णन महाभारत में कैसे बताया गया है, नगराश्च विनाशैव नदीश्च विमलोदका पुरुषान् देवकल्पाश्च नारीश्च प्रियदर्शना अदृष्ट पूर्वान् सुभागान् अदृष्ट पूर्व सुभगान् स ददर्श धनंजय सदनानि च शुभ्राणि नारीश्चाप्सरसाम्निभा। अर्थात यहाँ पर उल्लेख है कि इन दोनों वर्षों की स्त्रियां बहुत सुंदर होती थीं और कुछ तो अप्सराओं के तुल्य होती थी। उसके बाद है उत्तरा कुरु, यानी वैदिक भूगोल के अनुसार जम्बू द्वीप का उत्तरी भाग उत्तर कुरु वर्ष कहलाता है। यह 3 ओर से नमकीन पानी के समुद्र से घिरा हुआ है और हरणीय वर्ष के श्रृंगवान पर्वत के द्वारा विभाजित होता है। उसके बाद है किम पुरुष वर्ष। बताया जाता है कि यह वर्ष महान हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है, जो लंबाई और ऊंचाई में 80,000 miles और चौड़ाई में 16,000 miles है। विश्व के इन भागों को अर्जुन ने भी जीता था। सभा पर्व 28.1 और 2। किम पुरुष लोग दक्ष की पुत्री की संतानें हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो इन देशों के निवासी भी उस उत्सव में भाग लेने के लिए और उन्हों आए थे और उन्होंने सम्राट को भेंटे प्रदान की थी। इस भाग को किम पुरुष वर्ष या कभी कभी हेमवती यानी हिमालय के प्रदान किए हुए कहा जाता है। कहा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी यहीं पैदा हुए थे और वे हिमालय देशों को पार करके भारतवर्ष आए थे। दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने सारा विश्व जीत लिया था, जिसमें सभी दिशाओं के सभी सागरों के निकट के महाद्वीप सम्मिलित थे। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति कीरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्।
यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाराज परीक्षित किन किन देशों में दिग्विजय प्राप्त करने गए थे और विजित्य जगृह बलम, और फिर उसके बाद किन किन जगहों से उन्होंने विजय प्राप्त करके टैक्स या फिर भेंटे प्राप्त की। वास्तव में भक्तों, जब राजा किसी भी देश पर विजय प्राप्त करता है तो उस देश को, उस राजा को कर के रूप में कुछ देना पड़ता है। जैसे ये लिखा है गया बलिम, जगृह बलिम, कुछ वो टैक्स के रूप में अपनी प्रजा से लेता है। जैसे एक व्यक्ति होता है वो किराए के घर पे रहता है, तो किराए के घर में रहने वाले व्यक्ति को जो मालिक मकान है उसको कुछ न कुछ किराया देना पड़ता है। अगर वो किराया नहीं देगा तो क्या होगा जानते हो? तो कुछ सालों तक वो उसको थैंक्स करता रहेगा कि हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे घर दिया, और उसके बाद वो कब्जा कर लेगा। तो बलिम का मतलब क्या है कि वो देश उस राजा की आज्ञाओं का पालन करने में सहमत हो, वो एक्सेप्ट करे जो राजा बोलता है, और फिर जो टैक्स वगैरह जो राजा ने कहा है वो उसको लीक कर दे, मतलब सारी प्रजा को उनको देना चाहिए। और ये यहाँ पर जो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये सारी जगह उन्होंने कंकर्ड कर दिया था, पराजय कर दिया था, परंतु ये दिग्विजय जो है वो कोई साधारण दिग्विजय नहीं थी, क्योंकि द आइडिया वॉज टू कीप द होल वर्ल्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये क्या चाहते थे महाराज परीक्षित कि जहां जहां पर अधर्म का वास हो गया है, जहां जहां पर कलयुग ने कदम रख लिया है, मैं वहां वहां से उसको हटा दूंगा। तो वो कलयुग चला जाएगा तो सारे लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, इसीलिए वो दिग्विजय करने के लिए गए थे। क्योंकि ये जो भौतिक जगत है वो दुखालयम है, और यहाँ पर दुखी होना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता कि मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में कंप्लीट सुखी हूँ। हर जीव के जीवन में दुख आते हैं। अगर इस संसार में हमारे जीवन में दुख नहीं आते तो यहाँ पर रहने वाला मनुष्य यही सोचेगा कि ये दुनिया तो बहुत अच्छी है। वास्तव में ये तो प्रकृति के द्वारा एक योजना है कि समस्त लोग दुखी होकर दोबारा बैक टू गॉडहेड जाने का प्रयास करें, बैक टू होम जाने का प्रयास करें। अगर इस भौतिक जगत में सुखी नहीं हो, दुखी नहीं होगा तो सब आनंद से रहेंगे। जैसे पुलिस, अब पुलिस का क्या कार्य होता है कि वो अपराधियों को दंड देती है। दंड क्यों देती है? ताकि सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। उसी तरह जो भगवान की शक्ति है दुर्गा मैया, वो इस भौतिक जगत की जेल की सुपरिटेंडेंट है। जो भी अपराध करता है उनको वो पनिश करती है। जैसे दुर्गा मैया का यदि किसी ने चित्र देखा होगा तो उसमें उनके हाथ में त्रिशूल होता है। ये त्रिशूल किस लिए होता है? ये त्रिय ताप देने के लिए। इस भौतिक जगत में जो भी आया है दुर्गा मैया उसको तीन ताप तो अवश्य देती है, ताकि उसे इस भौतिक जगत के दुख का अनुभव रहे। वास्तव में भक्तों, वास्तविक धर्म क्या है? इस भौतिक जगत में आकर हमें क्या करना है? भगवान बताते हैं 18.66 में, सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। ये भगवान की फिलोसफी, ये भगवान का मत है, ये भगवान के आदेश है कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ। तो जो भगवान की शरण में आ जाते हैं उनको भगवान प्रोटेक्शन देते हैं। भगवान कहते हैं दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। जो भगवान की शरण में आ जाते हैं उन्हें तो माया प्रोटेक्शन देती है, लेकिन जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं उनको माया कष्ट देती है। तो जिस तरह एक पुलिस वाले का
ये कर्तव्य होता है कि नागरिकों को अपराध ना करने दे और अपराधियों को पनिशमेंट करे, उसी प्रकार ऐसा ही एक कर्तव्य हमारे छोटे, क्षमा कीजिए, तो गवर्नमेंट का क्या कर्तव्य होता है कि मतलब पुलिस वाले का कर्तव्य होता है कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को करने में सारे लोगों को सुविधा प्रदान करें और जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको पनिश करें। उसी तरह माया का भी यही कर्तव्य होता है कि जो भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें इस भौतिक जगत में जो आ गए हैं, भगवान का आदेश का पालन नहीं किया, उन्हें कष्ट दे। उसी तरह जो धर्मात्मा राजा होते हैं, जैसे जो पुलिस का कर्तव्य होता है वही धर्मात्मा राजा का एक कर्तव्य होता है कि वो भी प्रजा को उसके जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर करने में उसकी सहायता करे। इसलिए पहले जमाने में पहले ज्ञान जो है वो राजाओं को दिया जाता था। जैसे भगवान कहते हैं 4.1 में, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान इति प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राहु मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत, के पहले सबसे पहले सूर्य देवता को दिया, सूर्य देव ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इस तरह से ये उपदेश जो है वो एक के बाद एक को जो राज ऋषि है उनको दिया जाता था। क्योंकि जब राजा सद्गुणों वाला होगा, राजा यदि धर्मात्मा होगा, तो फिर प्रजा चाहे धर्म करना चाहे या ना चाहे, राजा उससे धर्म करवा ही लेता है। वास्तव में राजा यदि धर्मी हो जाए ना, तो फिर प्रजा के लिए भक्ति करना, धर्म करना बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि जब राजा को ये ज्ञान होता है कि यह मनुष्य जन्म प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर उपहार है, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है और भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो वास्तव में यदि राजा को इस सब ज्ञान होता है, तो फिर वो क्या करता है, अपनी प्रजा को भी यही धर्म को फॉलो करने के लिए प्रशिक्षित करता है। वास्तव में राजा या गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि प्रजा को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करे। तो वैसे आजकल की गवर्नमेंट जो है वो तो ऐसा कार्य करती नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है या नहीं कर रहा। वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करना ही सबसे बड़ी अहिंसा है। सबसे बड़ी हिंसा क्या है कि जीवों को आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते में रुकावट हो, और अगर आध्यात्मिक उन्नति करने में उनको सरलता प्राप्त होती है तो जीव के ऊपर सबसे बड़ा उपकार यही होता है। लेकिन आजकल की गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, उनको तो केवल अपने टैक्स से, उनको केवल अपने धन से, इसी से मतलब होता है। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मांसाहार कर रहा है, कोई परस्त्री संग कर रहा है, कोई शराब पी रहा है या कुछ कर रहा है। उनको क्या, आजकल की गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि मुझे आप भले मांस खाओ, आप भले शराब पियो, आप भले अवैध संग करो, बस मुझे टैक्स मिलना चाहिए। परंतु ये जो परीक्षित महाराज थे वो ऐसे नहीं थे। परीक्षित महाराज ने दिग्विजय क्यों किया था, ये दिग्विजय के लिए क्यों गए थे, ताकि सब जगह पर कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो और लोग कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करें, मनुष्य जीवन का लाभ प्राप्त करें। वास्तव में मनुष्य जीवन का अर्थ है कि हम इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल करके धर्म के मार्ग पर आगे जाएं, ताकि हम जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ सकें, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकें और इसीलिए महाराज परीक्षित फिर से उन्हीं जगह, हालांकि ये सारी जगह जैसे हमने पढ़ा युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन जी ने ये सारी जगहों पर पहले ही विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन वो वापिस ही जा रहे थे क्योंकि अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चाहते थे कि ताकि सबको पता चले, सब सरेंडर हो जाएंगे ना तो सबको पता चल जाएगा कि भाई हमारा राजा है, उसको ये चीजें नहीं करनी, मतलब करना नहीं, अगर करेंगे तो दंड मिलेगा और अगर ऐसा नहीं करते वो तो सब लोग क्या करते, वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देते। और जो भी कलयुग तो आ ही रहा है तो जो जो अपराध लोग जैसे होते वो अपराध होना शुरू हो जाते, इसीलिए वो दिग्विजय करने गए। और तकरीबन सारी जैसे हमने अभी पढ़ा श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि दूसरे शब्दों में महाराज परीक्षित ने सारे विश्व जीत लिया, पूरे विश्व को उन्होंने पराजित कर दिया, अपने अंडर में ले लिया, जिसमें सभी दिशाओं के सभी सागरों के निकट के महाद्वीप सम्मिलित थे, जितने भी आइलैंड थे, जितने भी प्लैनेट्स थे यहाँ पर, वो पृथ्वी लोक में जितनी भी जगह थी उन सब को महाराज परीक्षित ने परास्त करके उन पर विजय प्राप्त कर ली थी और हर जगह से कलयुग को समाप्त कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ वो हम कल पढ़ेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अच्छी तरीके से आप सबकी सेवा कर सकूं और अपनी साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।